अध्याय 69 दाऊद को सिंहासन पर बैठाया जाना। ये अध्याय 2 शमूएल 2 से 55 पर आधारित है। शाऊल की मृत्यु हो जाने से दाऊद को प्रवासी बनाने वाले खतरे टल गए। अब उसके लिए स्वदेश लौटने का मार्ग खुला था। जब शाऊल और योनातन के लिए शोक मनाने के दिन समाप्त हो गए, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? और उसने कहा, हेब्रोन में। हेब्रोन बेशबा से 20 मील उत्तर की ओर और नगर और यरूशलेम के भावी स्थल के बीच आधे रास्ते पर था। इसे आरंभ में किर्यतरबा कहा जाता था, अरबा का नगर, अनक का पिता अरबा। बाद में इसका नाम मामरे पड़ा और यहां मकपेला की गुफा में कुल पिताओं के गाढ़े जाने का स्थान था। हेब्रोन कालेब का अधिकृत क्षेत्र था और अब ये यहूदा का प्रमुख नगर था। ये फलवंत देशों और उपजाऊ पहाड़ी देश से घिरी हुई घाटी में स्थित है। फिलिस्तीन के सबसे सुंदर अंगूर के बाग उसकी सीमाओं पर थे और इसके साथ थे जैतून और अन्य फलों के असंख्य बागान। दाऊद और उसके साथियों ने परमेश्वर से प्राप्त निर्देश का पालन करने के लिए तत्काल तैयारी की। वे 600 हथियारबंद पुरुष अपनी पत्नियों और बच्चों सहित व उनके भेड़ बकरियां और मवेशी जल्द ही हेब्रोन के मार्ग पर थे। जब कारवा ने नगर में प्रवेश किया, यहूदा के पुरुष दाऊद का इज़राइल के भावी राजा के रूप में उसका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके राज्याभिषेक के लिए तुरंत प्रबंधन किया गया और वहां उन्होंने दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। लेकिन अन्य जनजातियों पर उसके अधिकार को बलपूर्वक स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। शाऊल और योनातन की स्मृति के लिए भावपूर्ण सम्मान व्यक्त करना नव अभिषिक्त सम्राट के सर्वप्रथम कृत्यों में से एक था। वीरगति को प्राप्त अगुओं के शवों को बचाकर लाने और उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी देने में याबेश गिलाद के पुरुषों के साहसी कार्य के बारे में जानकर दाऊद ने याबेश के पास एक राजदूत को इस संदेश के साथ भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर ये कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने ये काम किया है। और उसने यहूदा के सिंहासन पर अपने परिग्रहण की घोषणा की और उन सब की राजनिष्ठा को निमंत्रण दिया जिन्होंने स्वयं को निष्कपट प्रमाणित किया था। पलिश्तियों ने दाऊद को राजा बनाने में यहूदा के निर्णय का विरोध नहीं किया। उन्होंने उसके प्रवास में उसके साथ मित्रता की थी ताकि वे शाऊल के राज्य को कमजोर और प्रताड़ित कर सकें, और अब उन्हें आशा थी कि दाऊद के प्रति उनकी बीते दिनों में दिखाई गई दया के कारण उसके राज्य का विस्तार उनके लिए लाभदायक होगा। लेकिन दाऊद का राज्यकाल कठिनाइयों से मुक्त नहीं था। उसके राज्याभिषेक के साथ ही विद्रोह और षड्यंत्र का दुखद इतिहास आरंभ हुआ। दाऊद किसी देशद्रोही के सिंहासन पर नहीं बैठा था। परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा होने के लिए चुना था और अविश्वास या विरोध के लिए कोई भी कारण नहीं रहा था, और यहूदा के लोगों द्वारा उसके आधिपत्य की स्वीकृति के बाद ही अब्नेर के प्रभाव से शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को राजा घोषित कर उसे इज़राइल में एक प्रतिद्वंद्वी सिंहासन पर नियुक्त किया गया। ईशबोशेत शाऊल के घराने का एक निर्बल और अयोग्य प्रतिनिधि था, जबकि दाऊद राज्य का दायित्व संभालने के लिए पहले से ही उत्कृष्ट रूप से योग्यता प्राप्त था। अब्नेर, जो ईशबोशेत को राजसी अधिकार के लिए बढ़ावा देने में मुख्य कार्यकर्ता और इज़राइल में सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरुष था, शाऊल की सेना में प्रधान सेनापति रह चुका था। अब्नेर जानता था कि दाऊद को प्रभु ने इज़राइल के सिंहासन पर नियुक्त किया था, लेकिन इतने लंबे समय से उसका पीछा करने के बाद वो अब इस बात के लिए सहमत नहीं था कि ईशे का पुत्र उस राज्य का उत्तराधिकारी हो जिस पर शाऊल ने राज किया था। जिन परिस्थितियों के अधीन अब्नेर को रखा गया, उससे उसके वास्तविक चरित्र का विकास हुआ और पता चला कि वो महत्वाकांक्षी और सिद्धांतहीन था। शाऊल के साथ उसका घनिष्ठ संबंध रहा था और वो इज़राइल पर राज करने के लिए परमेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति का तिरस्कार करने की राजा की भावना से प्रभावित हुआ था। दाऊद के प्रति उसकी घृणा में वृद्धि तब हुई जब छावनी में सोते हुए शाऊल के पास उसका भाला और पानी की सुराही हटा लिए जाने पर दाऊद ने उसे झिड़का था। उसने स्मरण किया कि किस तरह दाऊद ने राजा और इसराइलियों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में कहा था, क्या तू साहसी पुरुष नहीं है? इसराइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? जो काम तूने किया है वो अच्छा नहीं है। यहोवा के जीवन की शपथ, तू मारे जाने के योग्य है कि स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। ये फटकार उसकी छाती में सुलग रही थी और उसने प्रतिशोध के उद्देश्य को कार्यान्वित करने का और इसराइल में विभाजन उत्पन्न करने का दृढ़ संकल्प किया, जिससे कि उसकी स्वयं की प्रशंसा हो सके। उसने अपने निजी प्रयोजनों और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए पूर्व राजसी सत्ता के प्रतिनिधि का उपयोग किया। वो जानता था कि लोग योनातन से प्रेम करते थे, उसे स्मरण किया जाता था और शाऊल के प्रथम सफल अभियानों को सेना ने भुलाया नहीं था। दृढ़ संकल्प के साथ ये उपद्रवी अगुआ अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने आगे बढ़ा। यर्दन पार महनैम को राजसी निवास के लिए चुना गया क्योंकि वो आक्रमण के प्रति सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता था, चाहे वो आक्रमण दाऊद करे या पलिश्ती। यहां इश्बोशेत का अभिषेक किया गया। उसका राज सर्वप्रथम यर्दन के पूर्व की जनजातियों ने स्वीकार किया और अंततः उसका विस्तार यहूदा को छोड़कर संपूर्ण इसराइल पर हो गया। 2 वर्ष तक शाऊल के पुत्र ने अपनी एकांत राजधानी में अपनी उपाधि का आनंद लिया, लेकिन संपूर्ण इसराइल पर अधिकार फैलाने के लिए उत्सुक आक्रामक युद्ध के लिए तैयार हुआ और शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। अंततः विश्वासघात ने उस सिंहासन को उलट दिया। अब्नेर दुर्बल और अयोग्य इश्बोशेत से अति क्रोधित होकर दाऊद के पक्ष में हो गया और उसने इसराइल की सभी जनजातियों को दाऊद की ओर फिराने का आश्वासन दिया। उसका प्रस्ताव राजा द्वारा स्वीकार किया गया और उसे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सम्मान के साथ भेजा गया। लेकिन एक प्रख्यात और वीर योद्धा के उत्साहपूर्ण स्वागत ने दाऊद की सेना के सेनापति योआब की ईर्ष्या को जागृत किया। अब्नेर और योआब के बीच कुल बैर रहा था क्योंकि यहूदा और इसराइल के बीच युद्ध के दौरान अब्नेर ने योआब के भाई असाहेल को मारा था। अब योआब ने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए और एक प्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने के लिए अवसर देखकर अब्नेर का रास्ता रोककर उसकी हत्या कर दी। इस विश्वासघाती वार की सूचना पाकर दाऊद ने कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में मैं सदैव निर्दोष रहूंगा। वो योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे। राज्य की अस्थिर स्थिति और हत्यारों के पद और अधिकार को देखते हुए, क्योंकि योआब के भाई अभिषय ने भी योआब की सहायता की थी, दाऊद अपराध के लिए निष्पक्ष दंड नहीं दे सका, लेकिन उसने सार्वजनिक तौर पर इस हत्या के प्रति अपनी घृणा प्रकट की। अब्नेर को सार्वजनिक सम्मान के साथ मिट्टी दी गई। योआब के नेतृत्व में सेना को शोक समारोह में सम्मिलित होना था, अर्थात अपने वस्त्र फाड़कर टाट का वस्त्र धारण करना था। मिट्टी देने के दिन राजा ने उपवास रखकर अपने दुख की अभिव्यक्ति की। वो प्रमुख विलापी की तरह स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला और कब्र पर उसने एक शोक गीत गाया जो हत्यारों के लिए एक फटकार था। अब्नेर पर विलाप करते हुए राजा ने कहा, क्या उचित था कि अब्नेर मूर के समान मरे? न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पैरों में बेड़ियां डाली गईं। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए, वैसे ही तू मारा गया। दाऊद द्वारा उसका कट्टर शत्रु रहे व्यक्ति को इतनी उदार मान्यता दिए जाने से दाऊद ने समस्त इसराइल के विश्वास और श्रद्धा को प्राप्त किया। सब लोगों ने इस पर विचार किया और इनसे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। अतत उन सब लोगों ने, वरन समस्त इसराइल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। अपने विश्वसनीय सलाहकारों और कर्मचारियों की अंतरंग मंडली में राजा ने अपराध की बात कही और अपनी इच्छा के अनुसार हत्यारों को दंड देने में उसकी व्यक्तिगत अयोग्यता को मानते हुए उसने उन्हें परमेश्वर के न्याय के लिए छोड़ दिया। क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और वे सरूयाह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। अब्नेर अपने प्रस्तावों और प्रतिनिधित्व में दाऊद के प्रति सत्यनिष्ठ रहा था, लेकिन उसके प्रयोजन नीच और स्वार्थी थे। उसने लगातार परमेश्वर द्वारा नियुक्त राजा का प्रतिरोध किया, क्योंकि वो स्वयं के लिए सम्मान सुरक्षित करना चाहता था। घृणा, घायल अभिमान और आवेग के कारण वो उस उद्देश्य को भूल गया जिसके लिए उसने इतने वर्ष प्रयास किया, और दाऊद की सेवा में सम्मान का उच्चतम पद पाने की आशा में वो उसके पक्ष में आया। यदि वो अपने प्रयोजन में सफल हो जाता, उसकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षा, उसके व्यापक प्रभाव और उसमें धार्मिकता के अभाव ने दाऊद के सिंहासन और राष्ट्र की शांति और समृद्धि को संकट में डाल दिया होता। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इसराइली भी घबरा गए। यह स्पष्ट था कि राज्य को बहुत दिनों तक कायम नहीं रखा जा सकता था। जल्द ही विश्वासघात के एक और कृत्य ने घटती हुई सत्ता के पतन को संपूर्ण किया। ईशबोशेत को उसके दो कप्तानों ने धोखे से मार दिया, जो यहूदा के राजा का अनुग्रह प्राप्त करने की आशा में ईशबोशेत का सिर लेकर उसके पास गए। वे दाऊद के सम्मुख अपने अपराध की रक्तरंजित साक्षी के साथ प्रस्तुत हुए और बोले, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का ग्राहक था, उसके पुत्र ईशबोशेत का यह सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का प्रतिशोध लिया है। लेकिन दाऊद, जिसका सिंहासन स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया था और जिसे परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से बचाया था, धोखे के सहयोग से उसके अधिकार को स्थापित करना नहीं चाहता था। उसने इन हत्यारों को शाऊल की हत्या करने वाले ढींग मारों के विनाश के बारे में बताया। जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब ईशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। ईशबोशेत की मृत्यु के पश्चात इसराइल के प्रतिष्ठित पुरुषों में सामान्य इच्छा थी कि दाऊद को सभी जनजातियों का राजा बनाया जाए। तब इसराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़मास है। फिर उन्होंने कहा, तुम ही हमारा नेतृत्व करते थे और तुम ही इसराइल को युद्ध से वापस लाए, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तू ही होगा। अतत सब इसराइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बौद्धी। इस प्रकार परमेश्वर की देखरेख में दाऊद के लिए सिंहासन पर आने का रास्ता खोला गया। संतुष्ट करने के लिए उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि उसने उस सम्मान की अभिलाषा नहीं की थी जहां तक उसे लाया गया था।
हारून और लेवियों के 8,000 से अधिक वंशज दाऊद की सेवा टहल करते थे। लोगों की भावनाओं में परिवर्तन स्पष्ट और निर्णयात्मक था। कांति शांत और सभ्य थी, उस कार्य के योग्य जो वे कर रहे थे। लगभग 50,000 जन, जो शाऊल की भूतपूर्व प्रजा थे, हेब्रोन और उसके पड़ोस में एकत्रित हुए। जनसाधारण से पहाड़ और घाटियां सजीव हो उठी थी। राज्याभिषेक की घड़ी निर्धारित की गई। वो मनुष्य जिसे शाऊल के दरबार से निष्कासित किया गया, जो अपने प्राण बचाने के लिए पृथ्वी की गुफाओं और पहाड़ों से भाग गया था, उस उत्कृष्ट सम्मान को प्राप्त करने वाला था जो किसी मनुष्य को दिया जा सकता है। याजक और पुरनिये अपने पवित्र कार्यभार के वस्त्र पहन, चमचमाते भाले और शिरस्त्राण धारण किए, अफसर और सैनिक और दूर दूर से आए परदेशी, चुने हुए राजा के अभिषेक को देखने के लिए खड़े हुए। दाऊद को राजसी वस्त्र पहनाया गया। महायाजक द्वारा उसके सिर पर पवित्र तेल डाला गया, क्योंकि शामुएल द्वारा किया गया अभिषेक राजा के अभिषेक के समय क्या होना था उसका भविष्य सूचक था। समय आ गया था और दाऊद पवित्र रीति से परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यभार के लिए समर्पित किया गया। उसके हाथ में राजदंड दिया गया, उसकी पवित्र सार्वभौमिकता की वाचा लिखी गई और प्रजा ने अपनी स्वामी भक्ति की शपथ ली। उसके सिर पर मुकुट रखा गया और अभिषेक समारोह संपन्न हुआ। इसराइल के पास ईश्वर द्वारा नियुक्त राजा था, वो जिसने प्रभु की बाट जोही थी। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते देखा और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहता था। दूसरा शामुएल 5:10।